मैनेजर ने फाइल वहीं छोड़ दी और घबराकर कमरे से बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद होते ही फैक्ट्री का वही शोर वापस गूंजा, लेकिन कमरे के भीतर अब सिर्फ पूनम और अर्जुन थे। कुछ देर दोनों खामोश रहे। पूनम ने फाइल उठाकर टेबल पर रख दी। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कमाल है, तुम डांटती बहुत हो लेकिन जिम्मेदारी भी पूरी निभाती हो। सच कहूँ तो तुम्हारे बिना ये फैक्ट्री एक दिन भी नहीं चल सकती। पूनम ने घूर कर देखा, तुम्हें चापलूसी करने की आदत है, और सुन लो, मुझे तुम्हारी तारीफ की ज़रूरत नहीं। अर्जुन ने आंखें नीची कर हल्के से कहा, ज़रूरत तुम्हें हो या ना हो, सच वही है। पूनम ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो पैकिंग सेक्शन की ओर देखने लगी, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज थी। अर्जुन की मौजूदगी हमेशा उसे असहज कर देती थी, गुस्से और बेचैनी दोनों का मेल। वहीं बाहर जाते समय मैनेजर अपने मन ही मन सोच रहा था, ये अर्जुन सर भी अजीब हैं, पूनम मैम से भिड़ते भी हैं, मदद भी करते हैं, दोनों के बीच जो भी है गड़बड़ जरूर है, लेकिन ये फैक्ट्री इन्हीं दोनों पर टिकी हुई है। उसके चेहरे पर एक उलझी सी मुस्कान थी। फैक्ट्री के बड़े हॉल से निकलकर मैनेजर एक कोने में जा खड़ा हुआ। अंधेरे हिस्से में उसने अपनी टाई ढीली की, माथे का पसीना पोंछा और होंठों पर कुटिल मुस्कान आई। धीरे धीरे उसने बुदबुदाना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज़ जहर की तरह साफ सुनाई दे रही थी। पूनम जी को लगता है कि उनकी डांट से मैं डर जाऊंगा। उन्होंने सबके सामने मेरी बेइज्जती की, लेकिन मैंने उस वक्त एक शब्द नहीं कहा, पर असल में खेल मैं ही खेल रहा हूँ। उन्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से उनका हर आदेश मान लूंगा? नहीं, असली डोर मेरे हाथ में है। जो गड़बड़ उनके प्रोडक्ट्स में दिख रही है वो किसी और की नहीं, सिर्फ मेरी बनाई हुई चाल है। ये जो पैकिंग की शिकायतें आ रही हैं, ये जो क्वालिटी पर सवाल उठ रहे हैं, सब मेरा काम है। धीरे धीरे उनकी साख मिट्टी में मिल जाएगी, और फिर जब उनकी कंपनी का नाम ही डूब जाएगा तो पूनम जी को समझ आएगा कि मजदूरों और मैनेजरों को यूं खुलेआम अपमानित करना कितना भारी पड़ा। वो हल्के से हंस पड़ा। अर्जुन सर भी समझते हैं कि उन्होंने मुझे चेतावनी देकर सब ठीक कर लिया। अरे, उन्हें तो पता ही नहीं कि असली गड़बड़ी किधरे है। जो कच्चा माल आता है उसमें मैंने ही मिलावट करवाई है। जितना पैसा बचाकर अपनी जेब भरता हूँ उतना ही उनका नुकसान होता है। आज एक कॉन्ट्रैक्ट बिगड़ा है, कल 10 बिगड़ेंगे, और जब ये सब जोड़ेंगे तो कंपनी के अकाउंट्स ही हिल जाएंगे। उस दिन मैं देखना चाहता हूँ पूनम जी का वो चेहरा, जब सब उनका नाम लेकर कहेंगे कि मैडम की नाकामी की वजह से कंपनी डूब गई। उसकी आंखों में लालसा चमक उठी। ये मेरा मकसद है, इस कंपनी को बंद करवाना, धीरे धीरे, बिना किसी को शक हुए। और जिस दिन ये दरवाजे हमेशा के लिए बंद होंगे, उस दिन मैं इस शहर की सबसे बड़ी कंपनी में मैनेजर बनकर बैठा रहूंगा, और पूनम जी वो बस याद करेंगी कि कैसे उन्होंने मुझे सबके सामने अपमानित किया था। उसने सिगरेट निकाली, आग जलाई और गहरी कश खींची। धुएं के बादल के साथ उसकी हंसी गूंज उठी। अब खेल असली शुरू होगा। अर्जुन केबिन के दरवाजे पर खड़ा था। चलो साथ में घर चलते हैं, उसने सीधा कहा। पूनम ने चश्मा उतारकर फाइल पर रख दिया, बिना उसकी तरफ देखे बोली, नहीं, अभी थोड़ा काम बाकी है, तुम चलो, मैं बाद में आ जाऊंगी। अर्जुन ने भौहें चढ़ाई, काम इस वक्त? ऑफिस का टाइम तो खत्म हो चुका है, मैं खड़ा हूं बाहर, और तुम कह रही हो कि बाद में आऊंगी? पूनम ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। हाँ अर्जुन, रिपोर्ट पूरी करनी है, रोज रोज टलती है, तुम समझ क्यों नहीं रहे? अर्जुन ने हल्की झुंझलाहट में कहा, समझ रहा हूं, लेकिन क्या ये बहाना नहीं लग रहा तुम्हें भी? सच बताओ, तुम बस मेरे साथ जाना नहीं चाहती। पूनम कुर्सी से उठ खड़ी हुई, और अगर चाहती नहीं तो इसमें गलत क्या है? मुझे अपनी स्पेस चाहिए, हर बार तुम्हारे साथ चलना जरूरी तो नहीं। अर्जुन ने बैग मेज पर पटका, वाह, पति हूं तुम्हारा या ऑटो वाला, लिफ्ट देनी है तो भी बहाना, घर चलना है तो भी बहाना। पूनम ने गहरी सांस लेकर धीरे से कहा, अर्जुन हर बात पर ताना मत मारो, जो सच है वही कह रही हूं, अभी मन नहीं है तुम्हारे साथ चलने का, और बस। अर्जुन ने कुछ पल चुप रहकर उसकी आंखों में देखा, ठीक है, जिद नहीं करूंगा, लेकिन याद रखना, ये दूरी तुम्हारे बनाए हुए बहाने से शुरू हुई है। पूनम ने फाइल उठाई और हल्की मुस्कान दबाते हुए बोली, बहाना कहो या सच्चाई, फर्क नहीं पड़ता, फिलहाल मुझे काम करना है। अर्जुन ने बैग उठाया, दरवाजे से बाहर निकलते हुए बस इतना कहा, चलो जैसा तुम्हें सही लगे। कमरे में खामोशी रह गई। पूनम फाइल पर झुक गई, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी बेचैनी थी।